इत्थाम् नृ तिर्याक् ऋषि झास् देव झास् अवतारहि लोकान् विभावयसि हंसि जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासी जुग अनुवृतम छन्न कलौ यत् अभवः त्रिजुगः अथ सह त्वम् इत्थम् नितिर्यग् इत्थम् नितिर्यग् ऋषिदेव झषावतारहि एव इत्थम् नितिर्यग् ऋषिदेव झषावतारहि लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदभवस्त्रिजुगोऽथ सत्वम् इत्थम् नृतिर्यग् ऋषिदेव झषावतारहि लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदभवस्त्रिजुगोऽथ सत्वम् इत्थम् नितिर्यग् ऋषिदेव झषावतारहि लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान् धर्मं महापुरुष पासि जुगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदभवस्त्रिजुगोऽथ सत्वम् इत्थम् इस प्रकार नृ मनुष्य जैसे यथा कृष्ण तथा रामचंद्र तिर्यक पशु की तरह का जैसे सूकर ऋषि महान ऋषि की तरह परशुराम देव देवतागण झस लचर जैसे मछली तथा कछुआ अवतार ही ऐसे विभिन्न अवतारों के द्वारा लोकान सारे लोकों को विभावयसी रक्षा करते हो हंसी कभी कभी मारते हो जगत प्रतिपान इस संसार में बाधा उत्पन्न करने वालों को धर्मम धार्मिक सिद्धांतों को महापुरुष, हे महान पुरुष, पासी रक्षा करते हो, युग अनुवृतम विभिन्न युगों के अनुसार छन्न ढका हुआ कलौ कलयुग में यत क्योंकि अभव हुए हैं और भविष्य में भी होंगे, त्रिजुग त्रिजुग नाम अथ अतएव सह वही पुरुष त्वं तुम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य, कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करते हैं। हे भगवान, युग के अनुसार आप धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आपका नाम त्रियुग कहलाता है, अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले भगवान। तात्पर्य, जिस प्रकार मधु तथा कैटव के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग चार हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष तीनों युगों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं, किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, अपितु जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया तब तब वे अपने हाथ से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वे जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतएव वे अपने आप को भगवान कहे जाने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से भागवत 11.5.32 में चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ति सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता, वह सुमेध सम अर्थात प्रचुर ज्ञान वाला व्यक्ति होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज की स्तुति पर विचार कर रहे हैं। कल हम लोग प्रहलाद महाराज के मुख से सुने, बालस्य नेह शरणौ पितरौ, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। हे नृसिंह देव, इस संसार में माता पिता बालक रक्षक नहीं है, न ही जो व्यक्ति किसी रोग से दुखी है तो उसका रक्षक कोई औषधि है, या कोई जल में है तो उसका रक्षक नौका है। अरे, देखा जाता है रक्षा करते हैं, तो कह रहे हैं कि हाँ रक्षा करते हैं, लेकिन तभी तक जब तक आपका ध्यान उधर नहीं है, आप मारना नहीं चाहते। आप मारना चाहे तो न डॉक्टर रक्षा कर सकता रोगी का, न माता पिता रक्षा कर सकते अपने बालक का, न नौका रक्षा कर सकती है यात्री का। वे रक्षा कहाँ है, लेकिन जब तक आप उधर उपेक्षा किए हुए हैं। ओ कह रहे हैं कि सच्चाई यह है कि इस संसार में जो भी कुछ है तो आप ही केवल हैं। आप सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे, मध्य में हैं, और इस समय जो भी सृष्टि में दिख रहा है तो वह आपका ही स्वरूप है। तो वास्तव में जो रक्षक देखे जाते हैं तो एक तरह से उनके माध्यम से आप ही रक्षा कर रहे। जैसे माना जाता है कि कोई रोगी है तो डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, रक्षा उसकी कर लेता है, लेकिन वास्तव में डॉक्टर के रूप में भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। और कई एक डॉक्टर इस बात को जानते हैं। हम सुनते हैं कि बनारस में एक डॉक्टर थे, बड़ा नामी डॉक्टर थे, वो रोगी को दवा करते थे लेकिन अपने रूम में खूब अच्छा लैमिनेशन टांगे थे, उस पर लिखा हुआ था आई ट्रीट ही क्योर्स, आई स्मॉल लेटर में लिखे थे और ही कैपिटल लेटर में, आई ट्रीट ही क्योर्स। मैं दवा करता हूं वह ठीक करते हैं। तो भगवान के इस रक्षा के वृतांत को नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज और थोड़ा विस्तार से स्थापित कर रहे हैं। और सृष्टि एक रस नहीं है, कभी कभी प्रलय हो जाता है, और उस समय भी सारे जीवों के आश्रय भगवान ही होते हैं। भगवान सोते हैं लेकिन वो तमोगुण में नहीं रहते हो, तो योग निद्रा में सोते हैं, और फिर जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि का प्रारंभ होता है, उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। लेकिन ब्रह्मा को पूर्व सृष्टि का कोई स्मरण नहीं रहता, उनको ज्ञान नहीं रहता, तो उनको आप ज्ञान भी देते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के कई एक ढंग से रक्षा करते हैं। कभी कभी तो ब्रह्मा जी के मुख से दैत्य लोग वेद की चोरी कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि उस समय भी आप उनकी रक्षा करते हैं, और खास करके उन दैत्यों का वध करते हैं। तो करें कि तस्मै भवान है फिरस तनुम ही बिभ्रत वेद द्रोह अति बलौ मधुकैट भाख्यो हत्वा अनयच्छति गणांश रजस्तमस्य सत्वम तव प्रियतमाम तनुमा मनन्ति। ये ब्रह्मा जी क्या चोरी हो गई, दो बहुत शक्तिशाली दैत्य थे मधु और कैटभ, तो कह रहे हैं कि मूर्तिमान तमोगुण और रजोगुण थे, ब्रह्मा जी से वेद चोरी कर ली। लेकिन भगवान भी अवतार ग्रहण किए, हय सिरा हय ग्रीव का रूप धारण करके उनका वध किए, अति शक्तिशाली दोनों दैत्य थे लेकिन उनका वध किए और वेद को ब्रह्मा जी को प्रत्यार्पित कर दे, लौटा दी। वे क्यों उनका वध किए, तो सत्वम तव प्रियतमा एक सिद्धांत दे रहे हैं कि वे रजोगुण और तमोगुण के मूर्ति थे, आपको तो सत्व प्रिय है। तो वास्तव में भगवान प्रकृति के गुण से उदासीन है। सत्व हो, रज हो, तम हो, तीनों प्रकृति के ही गुण हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को सत्व गुण से प्रेम है, लेकिन फिर भी सत्व गुण का वे आदर करते हैं इस अर्थ में कि भगवान जो शुद्ध सत्व में स्थित हैं, तो शुद्ध सत्व से सत्वगुण का मेल है, या रजोगुण और तमोगुण से सत्वगुण की विशेषता यह है कि सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, सत्वगुण की कुछ विशेषता है, उसमें स्थित होने पर ब्रह्म का अनुभव होने लगता है, उसका एक झलक मिलता है। तो कह रहे हैं कि हम तो उसी हयग्रीव रूप का आदर करते हैं, और कह रहे हैं कि केवल ब्रह्मा की ही रक्षा आप नहीं किए, केवल हयग्रीव अवतार ही नहीं ग्रहण किए। इत्थम नित्य ऋषदेव जसावतार लोकान विभाव यसे हंस जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पास जुगान वृत्तम छन्न कलव जद भवस त्रिजुगोत्त सत्व। कि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में दैत्यों का वध करके आप ब्रह्मा की रक्षा किए, जगत की रक्षा किए, उसी तरह आप भिन्न भिन्न योनि में अवतार ग्रहण करके जगत की रक्षा करते रहते हैं। जुगानुवृत्त, जिस युग में जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार आप रक्षा करते हैं। और भगवान विभिन्न योनि में अवतार लेते हैं, गिनती कर रहे हैं कि इत्थम नृ, भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, और तिर्यक कहते हैं पशु को, तो भगवान सुकर के रूप में अवतार ग्रहण किए, और ऋषियों में भी अवतार लेते हैं, जैसे परशुराम जी और देव देवताओं के देव योनि में भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, जैसे वामन देव तो देव योनि के स्वर्ग में अवतार लिए, और झस जो जलचर प्राणी हैं तो उसमें भी अवतार लेते हैं, मछली के रूप में या कछुआ के रूप में। तो ये अवतार लेकर के लोकान विभावयसि, भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है लोगों को समृद्ध बनाना, लोगों को सुखी कराना, सुखी करना, लेकिन इसके लिए आवश्यकता होता है तो जो धर्म के बाधक हैं तो उनका हनन भी करते हैं, उनको मारते भी हैं। तो कह रहे हैं कि धर्म महापुरुष पास जुगानुवृत्तम, आप हर युग में अवतार ग्रहण करके और धर्म की रक्षा करते हैं। छन्न कलव यद अभव त्रिजुगोत्त सत्व, लेकिन कलयुग में आप प्रच्छन्न रूप से अवतार ग्रहण किए तो इसलिए आपका एक नाम त्रिजुग है, भगवान का एक नाम है त्रिजुग। त्रिजुग का अर्थ हुआ जो तीन युग में अवतार लेते हैं। तो कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान कलयुग में अवतार नहीं लेते, केवल सत्य त्रेता और द्वापर में अवतार लेते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ना छन्न कलव, आप कलयुग में भी अवतार लेते हैं लेकिन छिप कर अवतार लेते हैं, प्रच्छन्न रूप से अपने को भगवान के रूप में प्रचारित नहीं करते, पर इसलिए आपका नाम त्रिजुग है। इस पर बहुत भारी बहस है, चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे भगवान के चैतन्य महाप्रभु के यात्रा का वर्णन, संन्यास के बाद तो कुछ दिन शांतिपुर में रहे, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए। माताजी के कहने से वे वृंदावन न आकर के जगन्नाथपुरी की यात्रा की। जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो कीर्तन के आवेश में थे, कीर्तन का, और उनके साथ चार लोग थे, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद और लोग थे। तो कीर्तन के आवेश में थे, जब आगे गए तो भार्गी नदी में स्नान किए और कपोतेश्वर महादेव का दर्शन के लिए गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके दंड को तोड़ करके भार्गी नदी में ही फेंक दिए। कपोतेश्वर महादेव का दर्शन किए, कीर्तन किए और वहां से जगन्नाथपुरी के तरफ आगे बढ़े। आगे एक स्थान है, आज भी वो स्थान है, 18 नाला कहते हैं। वो एक नदी है, 18 पिलर है या 17 पिलर होगा, जो इसी से उसको 18 नाला कहते हैं। तो वहां गए तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि हमारा त्रिदंड कहाँ है, त्रिदंड दो। नित्यानंद प्रभु कहे कि त्रिदंड तो नहीं है, तो क्या हो गया? अरे तो कीर्तन के आवेश में थे, अब आप इतना अछार खा करके गी रहे थे कि मैं आपको पकड़ने के लिए, आपकी रक्षा के लिए आपको पकड़ा तो आपको भी नहीं संभाल पाया, हम दोनों लोग त्रिदंड पर गिर गए। तीन दंड हैला, तीन खंड, दंड तीन खंड हो गया, तो अब दंड तो नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा क्रोध प्रकाशित किए, तुम लोग कैसा आदमी हो, अरे हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत अटैची है, क्या क्या है, एक हमारा धन था त्रिदंड, उसकी तुम लोग रक्षा नहीं कर पाए, बहुत झोला तो नहीं था ना, एक ही सामान था ना त्रिदंड, फिर कह रहे हैं कि एक त्रिदंड की रक्षा नहीं कर सके, तुम लोगों के साथ मैं नहीं जाऊंगा। अब तुम लोग या तो आगे चले जाओ, मैं पीछे से आऊंगा, और नहीं तो मैं आगे जाता हूं, तुम लोग पीछे से आना, साथ में नहीं जाना है। अब मुकुंद कहे कि आप आगे जाइए, हम लोग साथ नहीं जाएंगे, हम पीछे आएंगे। मुकुंद का आशय यह था कि हम लोग आगे चले गए, अब कीर्तन के आवेश में कहीं अचेतन होकर के पड़ जाए तो भाई कौन संभालेगा, और आगे रहेंगे तो कहीं अचेतन भी होगा तो पीछे से हम लोग चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु तैयार हो गए, अब मंदिर के तरफ जा रहे थे, जहां से झंडा दिखाई दिया वहां से तो उनका आवेश और बढ़ गया, और दौड़ते हुए गए मंदिर में दर्शन किए, और इतना प्रेम का आवेश आया कि दौड़ करके सोचे कि हम जगन्नाथ जी का आलिंगन कर लें, तो आलिंगन तो कर नहीं पाए, वहां पहुंचे नहीं, बीच में ही गिर गए, मूर्छित होकर के गिर गए। तो आप जगन्नाथपुरी जानते ही हैं कि एकदम खूब शिष्टाचार से भी जाइए, खूब सावधानी से, संयत से, फिर भी वहां के पंडा लोग ठोक देते हैं। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर गए, तो पंडा लोग बड़ा उद्विग्न हुए, ये कैसा आदमी है आकर के मुर्दा जैसा पड़ गया, और ये दौड़े मारने के लिए चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन संयोग से सार्वभौम भट्टाचार्य उसी समय मंदिर में दर्शन कर रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को देखे तो उनके मन में बड़ा विस्मय हो गया कि अद्भुत सन्यासी है, इसमें जो प्रेम का लक्षण है तो यह तो कोई मनुष्य में होता नहीं है, ये तो केवल भगवान के परिकरों में संभव है, जो नित्य पार्षद हैं, नित्य सहचर हैं, उन्हीं में है, ये आदमी में कैसे लक्षण दिख रहा है। उनका ध्यान उधर था, परीक्षा लोग दौड़े तो सबको मना कर दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अभी मना किए तो सब रुक गए। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब चेतना वापस आ जाएगी, मूर्छा भंग होगी। लेकिन बहुत देर हो गया, मंदिर मैनेजमेंट बहुत उद्विग्न हो रहा था और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको टंगवा करके, कुछ पुजारियों की सहायता लेकर के और कुछ अपने शिष्यों से अपने घर पर ले गए। और चैतन्य महाप्रभु मूर्छा के अवस्था में थे, वो घर पर ले गए और स्थान पोत करके वहीं उनको लिटा दिए। पीछे से नित्यानंद प्रभु मुकुंद और लोग आए तो मंदिर में दर्शन के लिए गए। तो अभी मंदिर के नजदीक पहुंचे तब तक वो चर्चा चल रही थी आपस में कि आज तो एक विचित्र सन्यासी आया था, वो तो मंदिर में मूर्छित होकर गिर गया। अब देखो तो सार्वभौम भट्टाचार्य ले गए, आपस में बातचीत चल रही थी, कोई घटना होती है तो लोग बात करने लगते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर थे, नित्यानंद प्रभु मुकुंद इत्यादि, तो वे लोग समझ गए थे तो चैतन्य महाप्रभु का ही लक्षण लग रहा है। वे अब क्या करें सोच रहे थे, तब तक गोपीनाथ आचार्य वहां उनको दिख गए। तो गोपीनाथ आचार्य से मुकुंद का पहले से परिचय था, मुकुंद नमस्कार किए। गोपीनाथ आचार्य बहुत आश्चर्य में पड़े, पूछे कि आप कैसे आ गए। तो वो बतलाए कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ आ रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों को पीछे से आने को कहे और हम लोग जैसा वर्णन सुन रहे हैं, नहीं तो वो पूछे कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है। वे जानते थे, गोपीनाथ आचार्य जानते थे पहले से। तो लोग बतलाए कि जैसा लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसे यही लगता है, हम लोग यही अनुमान कर रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर हैं चैतन्य महाप्रभु। तो गोपीनाथ आचार्य कहे कि चलिए वहां चलते हैं। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, उनके लिए वो स्थान अपरिचित नहीं था। तो वहां गए, अब तो चैतन्य महाप्रभु को देख करके भक्तों को प्रसन्नता भी कम से कम मिले तो, लेकिन जिस अवस्था में पड़े थे तो इसको देख करके बड़ा दुख हुआ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको रहने की व्यवस्था किए और पूछे कि आप लोग भगवान का दर्शन किए, तो कहे कि ना हम लोग तो यहीं आ गए। और कहे कि आप लोग जाइए भगवान का दर्शन कीजिए पहले, फिर यहां आइए। तो अपने बेटे को लगा दिए चंदनेश्वर को कि साथ में जाओ और दर्शन करा करके आओ। और जब उधर से दर्शन करके आए तो चैतन्य महाप्रभु तो अभी मूर्छित ही थे। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को संशय हो रहा था कि जीवित हैं कि अब प्राण निकल गया। तो एकदम छोटा सा रुई का फूई एक टुकड़ा नाक के नजदीक रखे तो थोड़ा सा स्पंदन हो गया, रुई हिल गई, तो उनको संतोष था। वो कीर्तन चल रहा था, लेकिन तीसरे पहर चैतन्य महाप्रभु फिर चेतना में आ गए और खूब उछड़ करके कीर्तन करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको कहे कि आप स्नान कीजिए, पहले प्रसाद लीजिए। तो उसके अनुसार सब हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु विश्राम के लिए चले गए तो गोपीनाथ आचार्य को लेकर के चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य तो बड़े विद्वान और उम्र भी अधिक है, लेकिन हैं गृहस्थ। तो जाकर के चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किए। और सन्यासियों को नारायण का स्वरूप माना जाता है, तो वे नमस्कार किए नमो नारायण ऐसा कह करके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दिए कृष्णे मतिरस्तु, आपकी मति कृष्ण में रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य तो विद्वान थे, ये समझ गए तो वैष्णव सन्यासी है। तो वहां से आए तो अब सार्वभौम नहीं गोपीनाथ आचार्य से कहने लगे कि ये जो सन्यासी आया है तो इसके पूर्व आश्रम का परिचय मैं जानना चाहता हूं, ये कहां से आया है। और गोपीनाथ आचार्य बतलाए कि ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, नवदीप से आए हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कि अच्छा तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, तो वो बतलाए कि, और ये भी बतलाए कि नीलांबर चक्रवर्ती के बेटी के लड़के हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाना का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, जब नीलांबर चक्रवर्ती का नाम लिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि हमारे पिताजी और नीलांबर चक्रवर्ती एक साथ पढ़े थे, तो अब अपने पिताजी के संबंध से वे उनके दोस्त का यह नाती है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का भी स्नेह बढ़ा और नाम पूछे कि इनका नाम क्या है और किस संप्रदाय में दीक्षित है। तो गोपीनाथ आचार्य कहे कि नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और ये केशव भारती से दीक्षा लिए, संन्यास ग्रहण किए। और सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि नाम तो बहुत सुंदर है, नाम बहुत उत्तम है, लेकिन भारतीय संप्रदाय तो मध्यम संप्रदाय है, इतने तेजस्वी सन्यासी दिख रहे हैं एकदम विष्णु जैसा तेज है, तो इनकी इच्छा होगी तो हम फिर से इनका जोग पट करा देंगे उत्तम संप्रदाय में। तो गोपीनाथ आचार्य कहे कि अरे वो भगवान है, इनको बाहर की अपेक्षा नहीं है, ये तो भगवान है ना, ये संप्रदाय पर बहुत ध्यान नहीं देते। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे क्यों कह रहे हैं भगवान है, तो कलयुग में तो भगवान कोई अवतार नहीं लेता है, ये भगवान के भक्त है, भगवान नहीं है। गोपीनाथ आचार्य कहे कि आप शास्त्र के विद्वान हैं लेकिन शास्त्र पढ़ने से भगवान का ज्ञान नहीं होता, जब तक थोड़ी सी कृपा नहीं होगी भगवान की तब तक कोई भगवान को नहीं जान सकता। चिरम विचिन्वन, भले को दीर्घ काल तक विचार करता रहे तो अब प्रश्न होगा कैसे भगवान का ज्ञान होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य लोग कहे कि अनुमान से होता है, गोपीनाथ कहे कि ना अनुमान से नहीं होता, भगवान के कृपा से होता है। जब तक थोड़ी कृपा नहीं होगी तब, अब सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि कैसे माना जाए कि आप पर कृपा है, तो गोपीनाथ आचार्य कहे इसलिए मैं भगवान को भगवान के रूप में देख रहा हूं, समझ रहा हूं, तो इससे स्पष्ट है कि हम पर कृपा है, शास्त्र पढ़ने से नहीं होता। सार्वभौम भट्टाचार्य कहे देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, भगवान का अवतार नहीं होता, त्रियुग कहा गया शास्त्र में। अब इसी आधार पर कह रहे हैं कि त्रियुग कि स्पष्ट नाम है भगवान का, त्रियुग तीन युग में अवतार लेते हैं, भगवान का अवतार कलयुग में नहीं होता है। गोपीनाथ आचार्य कहे कि आप आशय नहीं समझ रहे, त्रिजुग का भगवान का लीला अवतार नहीं होता है। आप शास्त्र पढ़े हैं, भागवत में तो स्पष्ट लिखा गया है कि वे अनुजुगम सभी युग में अवतार लेते हैं, भगवान गीता में स्पष्ट बोले हैं संभवामि जुगे जुगे, तो त्रिजुगा जो कहा गया है तो इसका इतना ही आशय है कि कलयुग में भगवान अपने को प्रकट नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान, पर इसी से आपको त्रिजुग कहा जाता है। और कह रहे हैं कि लोकान विभाव जैसी कोई भी अवतार आप लेते हैं तो लोकों का मंगल करते हैं। भाई एक प्रश्न होगा कि भगवान कैसे जगत को समृद्ध करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं। तो एक तो प्रकट बात है कि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के उपस्थिति का प्रभाव होता है कि सारा संसार उनके तरफ उन्मुख होने लगता है। कि भगवान के उपस्थिति का कितना भारी प्रभाव होता है आप श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं। जो कंस केवल आकाशवाणी सुना और छोटे छोटे बच्चों को उमार दिया, लेकिन जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो एक दिन तो देवकी देखते ही उसको समझ में आ गया कि इसके गर्भ में तो हमारी हत्या करने वाला आ गया। पूरे मृदृषि मैं इसको कभी ऐसा नहीं देखा था। भगवान देवकी के गर्भ में आए थे तो उसका प्रभाव था कि वो पूरा घर ही जेल ही जगमगा रहा था, प्रकाश से भरा हुआ था। वो कौन से एकदम निश्चय कर लिया, समझ गया कि हमारा प्राण हरा, प्राण लेने वाला आ गया, लेकिन हम क्या करें, मैं कौन उपाय करूं कि हमारा जस न जाए। वो विचार करने लगा कि ये गर्भवती है, इसके हत्या कर देता हूं तो हमारा जस समाप्त हो जाएगा। अर्थतंत्र, अरे जो एकदम पैसे के गुलाम है, पैसे के फेरे में है, वो भी अपने जस को नहीं गंवाना चाहता है, वो भी अपने जस की रक्षा करना चलता है। वो कह रहे कि अब तो हम इसकी हत्या कर देंगे तो लोक में इतनी निंदा होगी कि मैं मरा ही समझा जाऊंगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की बहुत निंदा होने लगती है तो उसको मृत ही समझिए। वो कहा कि ना, इस समय वध नहीं करूंगा। वो वध से विरत हो गया। ये कंस के मन में जो परिवर्तन आ गया उसका कारण सीधा है, क्योंकि भगवान है वहां उपस्थित। तो हम यह कह रहे हैं कि भगवान जगत का जो पालन करते हैं तो एक तो है कि भगवान की उपस्थिति से स्वाभाविक धर्म में प्रवृत्ति होती है, लोग यज्ञ इत्यादि करने लगते हैं। और दूसरी बात है कि भगवान उपदेश देते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उससे भी जगत का कल्याण होता है। यह भगवान के दृष्टि का प्रभाव होता है कि खुशहाली छा जाती है। आप कुंती देवी के स्तुति को पढ़ेंगे तो कह रही हैं कि आप चले जाएंगे हस्तिनापुर को छोड़ करके, आप इधर थे तो नदियों में जल भरा रहता था, खानों में खनिज पर्याप्त रहता था, और ये जो फसल है लहराते रहते थे, व्यक्ति निरोग रहता है भगवान के दृष्टि से। एक कवि ने लिखा है कि पड़ जाती है दृष्टि जिधर, खिल जाती है सृष्टि उधर। तो भगवान के उपस्थिति का कई एक ढंग से बहुत अच्छा प्रभाव आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान अवतार लेकर के लीला करते हैं, और जो व्यक्ति उन लीला का गान करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है, तो सदा सर्वदा के लिए निहाल हो जाता है, उसके सारी समस्या दूर हो जाती है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि लोकान विभाव ऐसी आप तो अवतार लेकर के लोगों की रक्षा करते, उनको समृद्धि देते हैं, उनका उत्थान करते हैं, खास करके लीला कथा करके, लीला करके, तो उसके कहने सुनने से लोगों का उत्थान होता है। लेकिन हमारी समस्या है कि नैतन मनस तव कथा से विकुंठ नाथ संप्रियते दुरित दुष्ट मसाद तीव्रम, कामातुरम हर्ष शोक भय षडार्थम तस्मिन कथम तव गतिम विमृशामि दीन। अरे लेके हमारी यह स्थिति है कि आपके कथा में आनंद का अनुभव नहीं कर रहे। संप्रियते विकुंठनाथ आप का तो धाम ऐसा है कि वहां कोई चिंता नहीं है, लेकिन नैतन मनस्तव कथा संप्रियते हमारा मन आपके कथा में प्रसन्न नहीं हो रहा है, उसमें सुख अनुभव नहीं कर रहा। यद्यपि यह प्रहलाद महाराज की स्थिति नहीं है, दैन्यवश या संसार की जो स्थिति है वो तो उससे आत्मसात करके संसारी लोगों को अपने साथ लेकर के इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि आगे वे कहे हैं कि हम तो आपके कथा से ही तृप्त रहते हैं। तो नैतन मनस्तव कथा सु विकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। अरे भगवान की कथा पवित्र है, तो भगवान पूछ सकते हैं कि आप ऐसे पवित्र अच्छे चीज में आपका मन क्यों नहीं लगता है। तो कह रहे हैं कि असाधु ये बहुत दुष्ट है, दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम, ये मन विषय प्रणव है और बहुत यह दुष्ट है और उसमें आनंद नहीं ले रहा है। तस्मिन कथम कामातुरम हर्ष शोक भय षडार्थम, मन की स्थिति को बतला रहे हैं कि काम से आतुर है और हर्ष शोक और भय और ईर्ष्या से आर्त है। आप विचार कर सकते हैं कि जो संसार के लोग हैं तो उनके क्या मानसिक स्थिति, हम लोगों के मन की क्या स्थिति है। कामातुरम कई एक कामना का उदय होता है, अब उसी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उद्यत है और हर्ष शोक भय ईर्ष्या इसी से आर्त है। तो मन को मन की दुष्टता है कि यह बहुत दुखी है, उसका कारण है कि इसमें बहुत प्रकार की ईर्ष्या है, धन की ईर्ष्या, लोक की ईर्ष्या, पुत्र की ईर्ष्या और हर्ष शोक और भय में उतराता डूबता रहता है, इसी का आवेश मन पर है। तो इसलिए आपके कथा में आनंद नहीं आता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तस्मिन कथम तो गति विमृश्याम दीन, अब इन सब स्थितियों में बहुत दीनहीन है, ऐसे मन में हम आपके तत्व का क्या विचार करें, आपके लीला का कैसे आस्वादन करें। पहले हम लोग विचार कर चुके हैं, एक दिन चर्चा हुई थी कि नजस चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम, जिसका चित्त बाह्य विषय में भ्रमित नहीं हो रहा है, और तमो गुहायम च विशुद्ध माविशद, न ही आलस्य में पड़ रहा, शुद्ध है। यद भक्ति योगानुगृहीत अंजसा मुनिर विचष्टे ननु तत्र ते गति, और वो मन शुद्ध है। भाई ये सब गुण कैसे आएगा, कैसे मन शुद्ध होगा, यह विषय में नहीं जाएगा। तो उसका मूल सूत्र दे रहे हैं कि यद भक्ति योगानुगृहीत, जिस मन को भक्ति योग का अनुग्रह प्राप्त है तो ऐसे मन में मुनि लोग आपके तत्व का विचार करते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो संसार के लोग हैं तो उनका मन तो हर्ष शोक और भय ईर्ष्या काम इससे भरा हुआ है, तो इसलिए आपके कथा में आनंद नहीं लेते, उसमें रुचि नहीं है, आपके तत्व को नहीं समझ पाते हैं। अरे यह स्थिति कैसे हो गई मन की, तो कह रहे हैं कि जिह्वाई कतो चित्त विकर्षति मा वितृप्ता, उसका कारण है कि इंद्रियां भोग के तरफ भाग रही हैं, जिह्वा एक तरफ भाग रही है, खींच रही है मन को, और शिष्णोन्यतस शिष्ण इंद्रिय एक तरफ मन को खींच रही है, और त्वगुदरम त्वक और उदर दूसरे तरफ खींच रहा है, श्रवणम कुतश्चित कान कहीं और खींच रही है, प्राणो नतश्चपल कुच कर्म शक्ति बहव सपत नहीं गेह पति नुलंती। जीवात्मा की यह स्थिति है कि उसको इंद्रियां घसीट रही हैं, अपने तरफ भोग के विषय में खींच रही है, और पांच इंद्रियां हैं, पांच ही नहीं कर्म इंद्रिय भी, हाथ पर काम के लिए खींचते हैं, कुछ करना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, आंख रूप देखने के लिए, कान शब्द सुनने के लिए, तो बहव सपत नहीं वह गेह पति नुलंती। जीव के दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कोई गृह स्वामी है और उसके कई एक पत्नी हो, तो जैसे वे अपने मांग को पूरा करने के लिए नोचती हैं, वह स्थिति है। इंद्रियां हमको चारों तरफ खींच रही हैं, इसलिए हम आपके गति पर नहीं विचार कर रहे। तो एवं स्वकर्म पतितम भवय तरण्या अन्योन जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हंते ति पारचर पिप्री मूढ़ मध्य। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एवं स्वकर्म पतितम, इस संसार में व्यक्ति अपने कर्म के कारण गिर गया है, भव वै तरण्या, ये जो संसार है इसको वैतरणी नदी के समान कह रहे हैं, और इस नदी में अन्योन जन्म मरणासन भीत भीत, एक दूसरे से भय है, और जन्म का दुख है, भूख प्यास का ज्वाला है, और इस प्रकार वह बहुत जल रहा है। स्व पर विग्रह वैर मत्र, एक दूसरे से झगड़ा है, किसी किसी से मैत्री है, तो झगड़ा में भी कष्ट है, मैत्री में भी कष्ट है, राग में भी जलन होता है। तो कह रहे हैं कि यह संसार की स्थिति है, हे प्रभु इस पर विचार कीजिए, और पिप्रही मूढ़ मध्यम, अब हमारा उद्धार कीजिए। भगवान को संबोधित कर रहे पारचर, ये संसार तो वैतरणी नदी में पड़ा है, लेकिन आप इससे अप्रभावित है, आप तो उस पार है, तो आप तो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, तो इस जीवात्मा का भी उद्धार कीजिए। और भगवान कहे अगर तुम सारे संसार के उद्धार की बात कर रहे हो, और तुम अपने उद्धार की बात करता है, अपने संबंधी के तो एक बात थी, मैं अकेले सारे संसार का कैसे उद्धार कर दूंगा, सबको कैसे खींच लूंगा। तो कह रहे हैं कन्यत्र से खिल गुरु भगवान प्रयास उत्तारिण से भव संभव लोप हेतु। देखिए भगवान आप अकेले हैं, लेकिन पूरे संसार को भी मुक्त करने में, ये दुख से उबारने में आपके लिए क्या प्रयास है, आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि भव संभव लोप हेतु, अरे आप अकेले ही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, इसका नाश करते हैं, ये सब प्राणियों को उद्धार करने में मुक्त करने में क्या प्रयास है, आपके लिए कोई प्रयास नहीं है, इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के थोड़ा चेतना पर विचार कीजिए, जब अपने साथियों को उपदेश देना हुआ तो वे कह रहे हैं कोति प्रयास सुर बालका हरे उपासने, अरे भगवान के भक्ति करने में कौन भारी प्रयास है, ये आसान है। तो अपने साथियों को भक्ति के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और भगवान को जीवों पर कृपा करने के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि कौन्य ते खुल गुरु भगवान प्रयास, अरे अब तो सारे संसार के हितैषी हैं, पूरे संसार का उद्धार करने में ही आपको कौन प्रयास करना पड़ेगा। मूढ़े से वह महदनुग्रह अर्थ बंध हो किम तेन ते प्रियजना ननु सेवता न, कह रहे तुम अपने लिए कहो न, तुम्हारा हम उद्धार कर देंगे, सबकी क्या चिंता कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि देखिए, अरे जो किसी भक्त का आश्रय ले लिया है, प्रियजना अनुसेवता, जो आपके भक्त की सेवा कर रहा है, उसके आश्रित है, तो उसको ये माया से पार करना कोई कठिन कार्य नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। अरे जो भक्तों के संग से दूर है, उसका उद्धार कीजिए। अब हमारी चिंता क्या कर रहे हैं, हम तो नारद जी का आश्रय लिए हैं, हम पार हो जाएंगे। तो जो संसार के लोग हैं, जो भव वै तरणी में डूब रहे हैं, इनको पार कीजिए, इन पर विचार कीजिए। वो अपनी स्थिति कह रहे हैं कि नैवे द्विजे पर दुदत्तय वै तरण्यम तदवीर्ज गायन महामृत मग्न चीता। हमको तो कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि हम तो आपके लीला का गान कर रहे हैं और उसी में तृप्त हैं। और मैं भी नदी में पड़ा हूं, लेकिन हमको भय नहीं, इसकी चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो आपके श्रवण कीर्तन से ही आनंदित है। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थम माया सुखाय भर मुद बहतो विबुद्धा। हम तो जो मूढ़ लोग हैं, पशु तुल्य हैं, जो माया सुख के लिए भारी टेंशन लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। हम तो आपके गुण का गान करके आनंद में है, हमें कोई माया की चिंता नहीं है। तो आप उनके विषय में चिंता कीजिए, उनको पार कीजिए। भगवान कह सकते हैं तो सबकी ठीका तुम ही ले लिए हो, अरे इस संसार में और भी ऋषि मुनि है ना, लोग दुखी हैं, तो वे उनको उपदेश देंगे और वे माया से पार हो जाएंगे। तब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रायण देव मुनि सो विमुक्ति काम, अरे कि ऋषि मुनियों की स्थिति है कि प्रायः वे अपने मुक्त होने के फेरे में मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा, अपने मुक्ति के लिए तो एकांत में जा करके साधना करते हैं, वे मौन व्रत धारण करके जप तप करते हैं, न परार्थ निष्ठा, वे दूसरे के मुक्ति की चिंता नहीं कर रहे। प्राय मुनियों की यह स्थिति है, लेकिन अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि नैतान विहाय कृपणन विमुक्ष एको। हम तो संसार के जो दुखी लोग हैं, कृपण लोग हैं, तो इनको छोड़ करके मैं अकेले मुक्त नहीं होऊंगा। और नान्यम तुदस्य शरणम भ्रमतो अनुपस्य, और हे भगवान, आपको छोड़ करके इन जीवों का आश्रय मैं दूसरे को नहीं देख रहा। कृपणा, वे बहुत दुखी हैं, बंधे हुए। मानो भगवान कहे कि दुखी क्या है, वो भी तो कुछ सुख ले रहे हैं ना, स्त्री है, परिवार है, और चीज है, तो उनको कुछ तो सुख है ही है। तो कह रहे कि यन्मैथुनादिग्रह मेद सुखम तुच्छम कंडू यने न करो रिव दुख दुखम। कितना ये जो मैथुन घर गृहस्थी का सुख है, तो तुच्छम अतिशय नगण्य है। उस सुख के पहले इतना कष्ट है और बाद में इतना कष्ट है, संताप है, कि उसको सुख माना ही नहीं जा सकता। और इस सुख के स्वरूप को बतला रहे हैं कि कंडू यने न करो रिव दुख दुख, यह सुख नहीं है। जैसे कोई खुजली को खजुलाता है तो क्या उसको सुख कहेंगे, वो तो तुरंत बहुत भारी जलन में परिणत होता है। तो यह सुख नहीं है, यह तो दुख दुख, ये तो बहुत भारी दुख है। अरे भाई, दुख है जब मैथुन इत्यादि में सुख नहीं है, जब कह रहे हैं कि बहुत भारी दुख है, तो आदमी स्वतः क्यों उसे विरत नहीं हो रहा है, दुख को क्यों प्राप्त करना चाहेगा, खुद ही विरत हो जाएगा। क्योंकि तृप्यंत नेह कृपण बहुत दुख भाजा, क्योंकि संसार के लोग दुख पर दुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे विरत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कृपणा है, उनके मन में ऐसी लालसा बसी हुई है कि उसी से एकदम बंधे हुए हैं, कृपण है, तो विरत नहीं हो रहे हैं। कंडितवत मनुष्यजम विसहित धीर, भगवान मानो पूछे कि सबकी यही स्थिति है कि ना, कोई कोई व्यक्ति हैं जो आपके कृपा से धीर हो गए हैं। तो कंडुतिवन मनसिजम विसहेत धीर, तो आपके कृपा प्राप्त धीर व्यक्ति इस काम के वेग को सह लेते हैं। उदाहरण देते हैं कंडुतिवन, जैसे किसी को खजली हो जाती है तो विवेकी पुरुष है तो खजलाता नहीं, वो जानता है कि खजलाने से और जलन होगा, बढ़ भी सकता है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार जो आपके कृपा पात्र हैं, धीर हैं, तो वे इस वेग को सह जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण अंश है। कंडूतिवन मनसिजम विसहेत धीर, काम के लिए करे मनसिजम, ये काम का जन्म मन में होता है। दूसरे जगह शब्द संकल्प प्रभुदय, इस संकल्प से उत्पन्न होता है कि जो धीर है तो इसको सह लेते हैं। तो वास्तव में भगवान उपदेश यही दिए कि काम क्रोध का वेग आता है, लेकिन जो व्यक्ति सह लेगा वही सुखी है। भगवान गीता में कहते हैं शक्नोति हैव यह सोढु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। शक्नोति जो इस काम क्रोध के वेग को सहने में सक्षम है, शक्ने तो यह सोढु अभी प्राक शरीर विमोक्षणात्, जब तक वह जीवित है, शरीर में प्राण है, वो तभी काम क्रोध के वेग को सह लिया तो सुखी है। प्राक शरीर विमोक्षणार्थ जब तक प्राण है, प्राण निकल गया तब तो सह ही लेता है। जैसे देखिए जिसका प्राण निकल गया तो देखा जाता है कि उसकी पत्नी या और कोई युवती स्त्री उसे लिपट करके रोती है, खास करके उसकी पत्नी एकदम भले युवावस्था में देहांत हो गया तो और आकर को लिपटती है, लेकिन अब पत्नी आकर के आलिंगन कर रही है लेकिन उस व्यक्ति पर तो कोई असर नहीं होता है, कोई काम का वेग तो नहीं आता है। अपना बेटा सीधे चिता पर रह करके आग लगा देता है, आग लगाता है कोई क्रोध नहीं आता है। तो कह रहे हैं कि प्राक शरीर विमोक्षणा, जैसे प्राण के निकलने पर ये जो विषय का अवसर है, काम उत्पन्न करने वाले साधन है, उसे एकदम अप्रभावित रहते हैं। ज्योति के आलिंगन से भी कोई प्रभाव नहीं आता है, सीधे शरीर पर आग डाला जाता है फिर भी प्रभाव नहीं आता है। तो प्राक शरीर विमोक्षणा वही स्थिति जीवित अवस्था में आ जाए तो सयुक्त वही योगी है, सयुक्त ससुखी वही सुखी है और वही नर मनुष्य वही है। अब काम क्रोध के वेग से बहे जा रहे हैं तो आप मनुष्य नहीं है, पशु हैं। आहार निद्रा अब इसी को लेकर के चल रहे थे तो पशु का लक्षण है। शक्नो तिहाई व यह सोडोम प्राक शरीर विमोक्षणा सयुक्त स सुखी नर काम क्रोधोद्भवम वेगम, ये काम क्रोध का वेग तो आएगा ही, शरीर है तो आएगा ही, लेकिन जो इसको सह लिया वह योगी है और वह मनुष्य है। ये बहुत भारी बात कह रहे हैं, कहने में तो आसान है लेकिन अब तो सबका अनुभव है कि वेग को सहना कितना कठिन है। कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी प्रसंग आ जाता है तो कह रहा हूं कि एक बार मैं यहां BIHE में पढ़ा रहा था, अंग्रेजी का क्लास था, हमको गीता दिया गया था, तो इस श्लोक को मैं बोला तो एक लड़की प्रश्न की, इज इट पॉसिबल ये काम क्रोध के वेग को सह लेना क्या संभव है? और संभव नहीं होता तो भगवान क्यों उपदेश देते? तत्काल हमारे पास प्रश्न आया, अब उसको समझाना था मैं यही समझा कि देखो ये जरूर कठिन है, असंभव जैसा लग रहा है, लेकिन किसी का आश्रय लेकर के इसको सहा जा सकता है। भाई आप चलने में असमर्थ हैं, देखते हैं ना, किसी का आश्रय ले लेते हैं तो कुछ दूरी पार कर जाते हैं, तो किसी का आश्रय लेकर के इस स्थिति को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, अपने बल से नहीं कर सकते लेकिन आश्रय लेकर के जरूर कर सकते हैं। मैं तत्काल में उदाहरण दिया कि देखो कोई लड़की है तो अपने माँ के साथ रहती है और माँ के साथ इतना घुल मिल करके रहती है, हम तो देखे हैं तो सयानी लड़की है तो माँ का हाथ पकड़ करके ही चलती है, एक साथ रहना, एक साथ सोना, एक साथ कहीं जाना आना, लेकिन वह लड़की अपने माँ का त्याग कर देती है ना। त्याग के पीछे क्या रहस्य, क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि उसको पति का सपोर्ट है। पति का सपोर्ट न रहे, पति का स्नेह न रहे तो त्याग करना बहुत कठिन है। तो उसी प्रकार ये जो काम क्रोध का वेग है तो इसको सहन करना जरूर कठिन है, लेकिन हम किसी का आश्रय लेते हैं तो ये आसान हो जाता है। भगवान यह श्लोक बोल करके आगे के श्लोक में कहते हैं कि योन्तः सुखम योन्तरा राम योन्तर ज्योतिरेव च लभते ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिग्गच्छति, नहीं सजुक्त ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिग्गच्छति। तो भगवान उपाय दे रहे हैं, टिप दे रहे हैं, वे कौन व्यक्ति सहन कर सकता है, योन्तः सुख, जो भीतर के सुख का अनुभव कर रहा है। ये जो विषय का सुख है तो बाहर का सुख है, एक दूसरा भी सुख है, वह भीतर का सुख है, आत्मा के अनुभव का सुख है। तो तीन चीज बतला रहा है, योन्तः सुख योन्तरा राम, जो भीतर ही रमण कर रहा है। आशय यह है कि जो व्यक्ति बाहर के सुख सुविधा का भोग नहीं कर रहा है, बाहर के साज सामान से संग्रह नहीं कर रहा है, योन्तरा राम, हम लोग तो मोबाइल बेड क्या क्या सुविधा जुटाते रहते हैं, लेकिन काम क्रोध के वेग को जुटना है, जितना है तो इससे दूर रहना पड़ेगा। जो बाह्य वस्तु है, स्त्री, पैसा या और भी जो सामान इत्यादि है, तो इससे आनंद का अनुभव न करना, इससे दूर रहना। और भी कैसे दूर हो जाएगा, तो अंतः ज्योति, भाई दृष्टि ही उसी पर रखेगा, अपना लक्ष्य अंतरात्मा को बना लिया तब सयुक्त ब्रह्म निर्वाणम, अब उसको ब्रह्म सुख का अनुभव होगा, ब्रह्म भूतो दिगच्छति, वो प्रकृति के गुण से ऊपर हो जाएगा और ब्रह्म सुख का अनुभव करेगा, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो सार रूप में मैं यह कहूंगा कि जो काम क्रोध के वेग को जीतना चाहता, अप्रभावित रहना चाहता है, तो उसको अंतरात्मा के भगवान के सुख के तरफ सुख का अनुभव होना चाहिए, उधर ही दृष्टि होनी चाहिए और उसी से जो संबंधित चीज है उसी का संग्रह करना चाहिए। यदि तीन काम करता है, तीन चीज का आश्रय लेता है तो काम क्रोध के वेग को सह जाएगा। तो प्रहलाद महाराज यहाँ कह रहे हैं कि कोई कोई धीर पुरुष हैं कि आपके कृपा से कंडू तिवन मनसीजम, ये मन में वेग आता है लेकिन इसको सह लेते हैं। आचार्य लोग समझाए हैं कि जो काम क्रोध लोभ का वेग है तो नदी के धारा के समान है, जैसे बरसात में नदी की धारा है, अब कोई उसको रोकना चाहे नहीं रोक पाएगा, ये रुकना साधारण कार्य है। लेकिन अब भक्तों का स्वभाव होता है कि वे मगर के समान होते हैं या तिमिंगल के समान होते हैं। वे नदी का आश्रय ही नहीं लेते हैं। जो समुद्र का आश्रय लिया है तिमिंगल या मकर मत्स्य, उनका साइज बहुत अधिक है, तो उनको अब नदी के वेग का कोई कठिनाई नहीं है। तो उसी प्रकार हम अपनी दृष्टि भगवान के तरफ लगा दें और उसी के अनुसार संग्रह करें और उसी का सुख अनुभव करें, तो काम क्रोध कोई समस्या नहीं रह जाएगा। भक्तों को मगर कहा गया। रूप गोस्वामी भी नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे कि भक्त मगरा मकरा, मैं भक्त रूप मकर को नमस्कार रहा हूं। असीलित मुक्ति नदी का, जो नदी मुक्ति नदी है इसका अनुशीलन नहीं करते, तो जो मकर है मतलब बड़ी मछली है, सार्क कहते हैं, या तिमिंगल जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो नदी के वेग से अप्रभावित हैं, धारा से अप्रभावित, क्योंकि वो समुद्र का आश्रय लिए। तो उसी प्रकार व्यक्ति अंतः सुख का आश्रय ले, अंतः सुख पर ही अपनी दृष्टि रखे और उसी में रमण करे, तो काम क्रोध के वेग को सहा जा सकता है। और कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि कोई कोई इसको सह लेते हैं, और कह रहे हैं कि ये संसार की स्थिति है, यद्यपि संसार में कुछ साधन है मुक्ति के लिए, लेकिन दुर्दशा यह है कि जिसको इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो उस साधन को भी पैसे के लिए बेच देता है। मौन व्रत, एकांत में रहना, अध्ययन करना, तपस्या करना, ये सब मुक्ति का साधन है, लेकिन जिस व्यक्ति के इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो पैसे के लिए यही काम करने लगता है। भाषण पैसे के लिए, कीर्तन पैसे के लिए, ये तो वृत्ति का साधन जीविका बना लेता है। और कोई कोई दाम्भिक है तो जीविका भी नहीं बना पाते हैं। इस अर्थ में कि कई एक दम्भी हैं, दम्भ कहते हैं कि वास्तव में जो चीज नहीं है उसको प्रदर्शित करना, तपस्वी नहीं है और तपस्या का प्रदर्शन कर रहे हैं, तप नहीं है लेकिन कभी कभी वृक्ष के नीचे जाकर के अनुष्ठान कर देते हैं, तो तप तो है नहीं, तो कुछ दिन तो ला करके मार क्या पैसा अनाज स्त्रियां वहां डालने लगती हैं, लेकिन तब तक किसी गड़बड़ी का पता चला वो दम भी है तो वो भी बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो अजितेंद्रिय हैं तो जीविका का साधन बनाते हैं, और जो दम भी है तो जीविका भी नहीं बना पाते, बहुत दिन नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि संसार में बहुत बहुत चीज है लेकिन आपके अतिरिक्त किसी सत्ता नहीं है और कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता। इसी से जो व्यक्ति भक्ति करता है, षडंगया भक्त्या, भगवान को नमस्कार करना, कीर्तन करना, उनका अर्चन करना, तो कह रहे हैं कि क्या इसके अतिरिक्त जीव के निस्तार का कोई उपाय है? इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तो भगवान से वे इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि सबको भक्ति में प्रेरित कीजिए। भक्ति से ही व्यक्ति भक्ति की प्राप्ति करेगा, प्रेम की प्राप्ति करेगा, और उसी से जीव का निस्तार हो सकता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और जगत के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना सुन करके नृसिंहदेव पर क्या असर हुआ, क्या वे बोले, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, इन सब बातों को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है
महाराज जी? दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जब हम बोलते हैं कि भगवान त्रियोगी हैं, भगवान त्रियुग भगवान को बोलते हैं, लेकिन जैसे जयदेव गोस्वामी ने जो कल्कि भगवान के लिए लिखा है और भी भागवत ने वर्णन है, तो कल्कि भगवान तो स्वयं विष्णु ही प्रकट होते हैं, सबको पता भी है, वो तो छन्न अवतार नहीं है, तब भगवान को हम त्रियुगी क्यों कहते हैं?
हाँ ठीक है। इनका प्रश्न है कि त्रिजुगा कहा गया भगवान को, मतलब लीलावतार नहीं होता है, और लीलावतार की आप गणना करेंगे तो बुद्धावतार है, कल्कि अवतार है, तो ये तो कलयुग के अवतार है। लेकिन आचार्यों ने समाधान दिया है कि वास्तव में अबे भगवान के पूरा पूरा अवतार नहीं है, वो सत्यावेशावतार हैं, और इसी से ये त्रियुगह का व्याख्या यह है कि स्वयं भगवान जो अपने को घोषित न करे, छिप करके आते हैं, तो इसलिए उनको त्रियुगह कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का कलयुग में अवतार नहीं होता है, अवतार तो है ही है, युगावतार होता है, कल्कि अवतार का, बुद्धावतार का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन वह भगवान का अवतार नहीं है, भगवान के शक्ति का अवतार है। और इस अर्थ में त्रिजुगा शब्द के उन्हें कोई कठिनाई नहीं आ रही, समझ में आ रहा है?
ये समझ में आ गया। अब जैसे हम सतयुग की बात कर रहे हैं तो भगवान का कौन सा अवतार माना जाएगा त्रियुग में? अगर हम त्रियुगी अवतार गिनेंगे तो सतयुग में आप कौन सा अवतार को मानेंगे जो त्रियुग के रूप में अवतरित हुआ? क्योंकि भगवान के अंश अवतार होते रहते हैं सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, लेकिन आपके अनुसार, आपने अध्ययन किया महाराज जी, तो आपके अनुसार सतयुग में मतलब कौन से अवतार को हम पूर्ण अवतार माने कृष्ण का?
और मत्स्य भगवान है, अब देखना पड़ेगा किस किस युग के अवतार हैं, जैसे त्रेता के भगवान राम,
भगवान
और द्वापर के बलराम जी हैं, और वो सब लिस्ट देख करके बनाना पड़ेगा।
एक प्रश्न प्रभु जी ने पूछा है, जब हम सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से ही ब्रह्मांड के सभी जीवों का उद्धार हो गया था, तो क्या यह वही श्लोक है 7.9.41 41वां श्लोक पूछ रहे हैं? ये वही श्लोक है जब हम लोग जैसे लेक्चर में सुनते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर में कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से नरसिंहदेव सारे जीवों का उद्धार कर लिए, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं ये वही श्लोक है 7वें अध्याय का 41वां श्लोक?
नहीं समझ रहा।
ये जो अभी आपने 41वां श्लोक,
ये कहा गया है कि प्रहलाद महाराज के प्रार्थना से नृसिंह देव उस समय के सारे जीवों को मुक्त कर दिए,
तो हम इसी श्लोक को माने ना भागवतम में जो अभी आपने डिस्क्राइब किया है 41वां श्लोक?
यहाँ तो प्रार्थना कर रहे हैं ना।
हाँ,
यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हम आगे भी इसकी चर्चा,
जैसे यदि हमें कभी रेफरेंस देना पड़ेगा तो हम कौन से श्लोक को दें? जब हम जब ये बात बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से नरसिंह देव सारे जीवों का उद्धार करके अपने धाम में ले गए, तो हम इसी श्लोक को प्रभु जी पूछ रहे हैं यही श्लोक को हम कोट करें कि कोई अन्य श्लोक है?
अब श्लोक तो हम अभी नहीं कोई कट कर सकते हैं, हम यही सुने हैं, ऐसा सुना जाता है कि भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद की प्रार्थना को स्वीकार किए और उस समय के सारे जीवों को मुक्त कर दिए, कहीं दूसरे जगह उल्लेख होगा, यह कहाँ उल्लेख है? अभी आएगा तो हम लोकेट करेंगे, अभी नहीं हम लोकेट कर सकते। इसमें तो प्रार्थना कर रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की